मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 6 दिसंबर 2017 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के लाइफ मैनेजमेंट के लिए मैंने बहुत ही एक व्यावहारिक विषय का चयन किया है और काफी कुछ मजेदार होने के साथ साथ थोड़ा सा शायद आपको यह विषय चिंता में भी डाल दे, सोचने के लिए शायद थोड़ा सा प्रेरित करे, या यूं कहूं कि सोचने के लिए शायद थोड़ा मजबूर भी कर दे। और स्पेशली जो आज का विषय है, इनफैक्ट मैं कहना चाहूंगा कि शायद पेरेंट्स के लिए को ज्यादा संबोधित है। यूं कह लीजिए कि पेरेंट्स को ध्यान में रखकर आज मैं अपनी कुछ बातें उनके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। और इनफैक्ट मैं ये जो शेयरिंग कर रहा हूं अपने विचारों की, ये एज ए पेरेंट्स ही कर रहा हूं क्योंकि मैं भी पेरेंट्स हूं। दरअसल मित्रों हो क्या रहा है कि अभी पूरे देश में शादी का माहौल है और आप देख रहे हैं कि शहर बैंड बाजों से गूंज रहे हैं और सड़कें भी नाच और गाने में मशगूल हैं। आप किसी भी रास्ते पर निकल जाइए तो आपको थोड़ी देर तक, अगर शाम को आप निकलते हैं, रात में निकलते हैं, तो थोड़ी देर तक आपको मजबूर में ही सही लेकिन उनके नाच को देखना पड़ेगा और जो डीजे जैसे गाने बजते हैं उन्हें सुनना भी पड़ेगा, आप चाहे उसे पसंद करें या पसंद न करें। यानी कि पूरे देश में शादी का माहौल है, खूब धूमधाम है और एक अच्छी बात है क्योंकि ये उत्साह को व्यक्त करता है। इसका मतलब यह हुआ फ्रेंड्स कि शादी यानी कि विवाह एक उत्साहजनक पर्व है। मैं इसे पर्व ही कह रहा हूं। डेफिनेटली लड़के लड़की दो लोग अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं, दो परिवार आपस में मिलते हैं और पूरा समाज उसका गवाह बनता है। इसीलिए आप देखिए कि किस तरीके से सजावटें होती हैं, किस तरीके से उत्सव मनाने के जो माहौल होते हैं, खाने पीने की व्यवस्था होती है, लोगों के कपड़े देखिए तो नए और बहुत ही कीमती कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, नाच गाना होता है, मतलब चारों तरफ जो माहौल होता है वो उत्साह का, उमंग का, खुशी का माहौल होता है। इसका साफ मतलब है कि जो विवाह है वो एक खुशी का अवसर है। लेकिन दोस्तों जब मैं कभी कभी इन्हें देखता हूं तो मन अंदर से पता नहीं क्यों कुछ उद्वेलित सा भी होने लगता है, चिंतित सा भी होने लगता है, कुछ सोचने लगता है, उत्साह के साथ साथ सोचने लगता है। मैं सोचता ये हूं कि जिस लड़के की शादी हो रही है, जिस लड़की की शादी हो रही है, क्या सच में दोनों एक दूसरे से शादी करने को तैयार थे? पहला सवाल मेरे दिमाग में यह आता है। मैं जानता हूं कि बहुत से तैयार हुए ही होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं डाउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे जहन में जो सवाल उभरता है, पहला सवाल ये होता है। और फिर जब जवाब में ये मिलता है कि नहीं तैयार ही होंगे, तो फिर मेरे दिमाग में एक जो दूसरा सवाल उठता है जिसका उत्तर सच पूछे तो बहुत ही संतोषजनक नहीं मिल पाता, और वो ये कि अभी एक दूसरे से मिलने का जो उमंग है, जो चाहत है, जो उत्साह है, जो बेचैनी है, क्या वो आगे तक बनी रहेगी? और अगर वो नहीं बनी रहेगी और वहां अगर कुछ दरार आती है तो क्या हमारा अभी का जो समाज है, जो इस विवाह का साक्षी बन रहा है, क्या वह फिर से साक्षी बन करके उस दरार को पाटने की कोशिश करेगा? या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुद अपने आप में ही इस दरार को बनाने वाला बन जाएगा, जैसा कि अक्सर मामलों में देखा गया है? और ये दरार बनाने वाले मित्रों समाज और पड़ोसी के लोग तो क्या बनेंगे, सच पूछे तो परिवार के लोग ही बन जाते हैं, परिवार के लोग ही बन जाते हैं। तो फिर मन एक अलग किस्म की उदासी से मित्रों घिर जाता है। घिर इसलिए जाता है कि इतना उमंग, इतना उत्साह, सब कुछ छलक रहा हो जैसे, लेकिन कुछ समय के बाद इन सारे उत्साह को कौन सी नजर लग जाती है? क्या काला टीका इसके माथे पर लगाया जाए? कुल मिलाकर यह कि यह जो वैवाहिक जीवन है, ये आगे चल करके एक सुखी जीवन में तब्दील क्यों नहीं हो पाता? देखिए, मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूं कि इससे पहले जो करीब 40-50-30 साल पहले जो विवाह हुए, 40 साल पहले जो विवाह हुए हैं, उनमें आपको उतने संकट दिखाई नहीं देंगे। ये संकट आज के विवाह में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो लोगों की जनरली ये धारणा बन जाती है कि नहीं नहीं उस समय के लोग बहुत अच्छे थे, आज के ही लड़के और लड़कियां अच्छी नहीं है, उनकी सहनशीलता कम हो गई है, वो एक दूसरे को एकोमोडेट नहीं कर पाते, सामंजस्य नहीं बैठा पाते, अब उनको सामूहिक जीवन जीना बड़ा भारी पड़ता है, सब अपना जीवन जीना चाहते हैं। हम इस तरह के वक्तव्य दे देते हैं, लेकिन सच पूछे तो अगर हम थोड़ी सी भी गहराई से जाकर के देखें तो मुझे ये निष्कर्ष निकाल पाने में कोई बहुत ज्यादा दुविधा नहीं होती है कि जो 40-50 साल पहले जो विवाह होते थे और जिनमें इस तरह के सामाजिक संकट दिखाई नहीं देते थे, उभर कर नहीं आते थे, दोनों कोर्ट कचहरी तक नहीं पहुंचते थे, उसका कारण यह था कि जो पत्नी होती थी अक्सर ज्यादातर मामलों में वो समर्पण के भाव से जीती थी, वो कुछ सवाल ही नहीं उठाती थी, उसके दिमाग में कोई प्रश्न नहीं होते थे, उसकी अपनी कोई इच्छाएं नहीं होती थी। सच पूछे तो वो जिस परिवार में जाती थी उस परिवार की इच्छाओं के अनुसार ही जीना शुरू कर देती थी, यानी कि उस परिवार की इच्छा ही उसकी अपनी इच्छा बन जाती थी, या आप यूं कह लीजिए कि वो अपने हस्बैंड पति का प्रतिरूप प्रतिच्छाया बनकर जीवन यापन करती थी, तो फिर सवाल ही नहीं उठता कि इस तरह के संकट वहां पैदा होंगे। लेकिन मित्रों, ये कोई बहुत आदर्शतम स्थिति तो नहीं है कि हम न चाहते हुए भी समर्पण करें, न चाहते हुए भी चाहना एक बहुत अच्छी बात है, और अभी भी हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे विवाह हो रहे हैं जो बहुत अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं, बहुत ही खुशहाल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबके साथ ये हो रहा है, जिनके साथ ऐसा हो रहा है मैं उनकी बातें कर रहा हूं। मित्रों, ऐसा हो क्यों रहा है, आज के समय में इसकी संख्या क्यों बढ़ रही है, इसका एक बहुत ही स्पष्ट कारण मुझे दिखाई देता है, और देखिए वह यह है कि अब जो समय आ गया है, समय बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन मुश्किल यह है कि क्या उस बढ़ते हुए समय के अनुकूल हमारे अपने विचार आगे बढ़ पाए हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो कॉलेज में लड़कियों की संख्या बहुत कम होती थी, बहुत ही कम हुआ करती थी, कॉमर्स में तो लड़कियां मिलती ही नहीं थी, इंजीनियरिंग कॉलेज में तो सवाल ही नहीं है कि वहां आपको लड़कियां दिख जाएंगी। आज आप देखिए कि किसी भी सब्जेक्ट में चले जाइए, किसी भी कोर्स में चले जाइए, लड़कियों की संख्या पर्याप्त है, यानी कि लड़कियों में शिक्षा की चाहत बढ़ रही है, और एक अच्छी बात है कि माँ बाप भी इस चीज को पसंद करने लगे हैं और ये मानने लगे हैं कि नहीं, लड़कियों को पढ़ा लिखा कर कम से कम इस लायक तो बना दिया जाए कि जरूरत पड़ने पर वो अपना निर्वाह कर सके। एक तरफ हम ये बात सोचते हैं और दूसरी तरफ मैंने महसूस किया है कि जब हम उनके विवाह के बारे में सोचते हैं तो उस सोच का तालमेल इस पहले वाली सोच के साथ नहीं बैठ पाता। मैडम के पास भी बहुत से फोन आते हैं, प्रीति के पास, और उसमें इस संकट से जूझते हुए लोगों की बातें होती हैं और दोनों पक्षों से होती हैं, यानी कि सिर्फ लड़कियों की तरफ से भी होती हैं। जो विवाह का दबाव होता है वो लड़कियों पर तो होता ही होता है, उन पर सबसे ज्यादा होता है, लड़कों पर भी होता है, और वो तय कर दिए जाते हैं और बिना यह सोचे तय कर दिए जाते हैं कि सच में लड़की और लड़कों का जो शिक्षा का स्तर है, उनकी जो सोच है, उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, उसमें कोई साम्य है या नहीं है। मतलब ये भी आप यूं कह लीजिए कि एक अनमेल किस्म का ही विवाह है कि लड़की मान लीजिए कि पोस्ट ग्रेजुएट है और पता लगा कि लड़का मुश्किल से 11वीं पास है। मैंने ये भी हम कई उदाहरण पाए हैं, फोन की बातचीत से पता लगता है, फोन पर बातचीत से कि पता लगा कि लड़का बहुत ही छोटी सी नौकरी में है, बहुत कम पढ़ा लिखा है, छोटी सी नौकरी में है, लेकिन लड़की बहुत पढ़ी लिखी है और अच्छी खासी नौकरी में है, लेकिन जब उसकी शादी होती है तो बकायदे सब चीजों की मांग की जाती है लड़की वालों से और लड़की वाले देते हैं। मित्रों, क्या यह भी आपको एक किस्म का अनमेल विवाह जैसा दिखाई नहीं दे रहा है? सामान दहेज इन सब का जीवन कितना है? बहुत ही थोड़ा सा है, लेकिन जो हम दो लोगों को मिला रहे हैं वो तो ताउम्र चलना है, तो क्या हमें वहां मानसिक साम्यता नहीं देखनी चाहिए कि लड़के और लड़की की जो मानसिक पृष्ठभूमि है, जो मानसिकता है, वो समान के आसपास है या नहीं? देखिए, बिल्कुल समान की बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन लगभग लगभग कुछ तो समानता उसमें होनी ही चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। उसका कारण अभी भी यही है फ्रेंड्स, मेरे कई पेरेंट्स से मेरी बात भी होती है, उनको लगता है कि यार लड़की की जल्दी से शादी करके और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। जब हम जिम्मेदारी से मुक्त होने की भावना से सोचते हैं तो बट नेचुरली कि हमें लगता है कि यह एक बोझ सा है और जल्दी से हल्के हो जाओ, इसके बाद फिर वो जाने और उनका काम जाने, हमने अपना काम कर दिया। मुझे कभी कभी ये लगता है मित्रों, जो जब हम ऐसा करते हैं तो कि हम अपने कंधे का बोझ उतारना चाहते हैं, हम अपने कंधे का बोझ तो उतार देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि वो बोझ उतार करके अपनी लड़की के सिर पर रख देते हैं। यानी हमारे कुछ और वक्त का जो बोझ हम ढोते ही शब्द चलिए मैं कह ले रहा हूं, हालांकि बड़ा निगेटिव शब्द है, उसको हम अपनी बेटी के जिंदगी भर के बोझ में तब्दील कर देते हैं। क्योंकि उसको हमने जो बोझ दे दिया, अगर हमने बोझ दे दिया, हमने गलत शादी कर दी, तो डेफिनेटली वो तो उसके जिंदगी भर के लिए बोझ बन गया ना, और उसको निभाना है। भारतीय समाज में वहां जाने के बाद फिर निकलने के बहुत कम अवसर मिल पाते हैं, बहुत कम अवसर शेष रह जाते हैं। वहां जाने तक के जाने के रास्ते तो हैं, खूब चौड़े रास्ते हैं, लेकिन निकलने की जो गली है वो बहुत सक्रिय है, और कहीं कहीं तो गली है ही नहीं। दोस्तों, जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने एक उपन्यास पढ़ा था हजारी प्रसाद द्विवेदी का, पुनर्नवा। हजारी प्रसाद द्विवेदी मेरे बहुत प्रिय लेखकों में है और कवियों में है जयशंकर प्रसाद, मैं बेइंतहा प्यार करता हूं, श्रद्धा रखता हूं इन दोनों के प्रति। उनका उपन्यास था पुनर्नवा। पुनर्नवा का मतलब है बार बार नया होना। बहुत ही गजब का उपन्यास है। दो या तीन बार तो शायद मैं पढ़ चुका हूं और अब मैं फिर से उसे पढ़ने का प्लान कर रहा हूं। इतना खूबसूरत उपन्यास है। उसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर हमने अपने को नहीं बदला और परंपराओं में ही जकड़े रहे तो ये जो परंपराएं हैं ये तो टूटेंगी ही। आप परंपराओं को बचाकर नहीं रख सकते, परंपराएं तो टूटेंगी ही, लेकिन अपने साथ वो समाज को भी तोड़ डालेंगी। तो समाज को तोड़ डालेंगे, उससे पहले वो किसको तोड़ेंगे? वो व्यक्ति को तोड़ेंगे, वो हमको तोड़ेंगे। और खासकर विवाह के मामलों में हम सब, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी परंपराओं की जकड़न से अपने आप को जकड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि जब तक हम इससे जकड़े रहेंगे मित्रों, कहीं ना कहीं हम लगातार टूटने का अनुभव भी करते रहेंगे। और सच पूछिए, जब मैं कोई भी विवाह के इस तरह के आयोजन को देखता हूं तो ये मेरा अपना दुर्भाग्य है कि मेरे दिमाग में वो टूटने की तस्वीरें कुछ ज्यादा सामने आती हैं। तो मित्रों, बस मैं एक छोटी सी अर्ज पेरेंट्स से करना चाहूंगा, एक छोटा सा अर्ज, और वो यह कि आज के समय में अब हमें लड़कियों के लिए भी एक नई सोच विकसित करने की जरूरत आ पड़ी है। और मुझे यकीन है कि मेरी इस बात पर जो पेरेंट्स हैं वो संवेदनशीलता के साथ और मुझे माफ करते हुए विचार करेंगे। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।